सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग में पिछले कुछ घंटों से सभी भाव जो वक्ता बोले वो चाहे साधन कुछ भी रहा हो, भजन रूप हो, स्पीच रूप हो, कविता रूप हो, तो एक ही मकसद इस इंसानी जन्म का कि ये जीवन को जीने का तरीका क्या है। ये जीना तो है पर खुद को सिर्फ ये शरीर मान के नहीं, एक जीवन जो मिला है परमात्मा द्वारा वो सिर्फ प्रभु परमात्मा को प्राप्त करना ही परम लक्ष्य के लिए मिला है। बाकी काम काज और जो भी इस जीवन में जीते जी होता है वो तो साथ साथ एक स्वाभाविक रूप में हो जाता है, पर ये आत्मा का कल्याण जीते जी ही इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस परमात्मा को प्राप्त करके होता है। तो एक आत्मा जो हमेशा से एक बंधन में बंधी हुई, एक सल्वेशन मुक्ति या आज़ादी की बात इस आत्मा की, तो वो मनुष्य जन्म में ही संभव है। तो जीते जी समय न्याय व्यर्थ किया जाए ऐसा ही संतों ने सिखाया है। और जैसे ये जगह का नाम भी हल्द्वानी, तो बात वही कि हल देव आनी, कि हल कोई भी चीज़ का हो वो मन में देव परमात्मा निराकार के आने से ही होगा, वरना तो ये परिस्थितियों ने आना जाना है। तो कैसे ये आत्मा का हल, ये सल्यूशन, ये मुक्ति, ये परमात्मा की जानकारी और उसी से अपनी आप की जानकारी होती है कि वाक्य में तो शरीर तो कुछ सालों का ही है, असल में तो इस आत्मा की पहचान ये परमात्मा है। और जीते जी इस रास्ते पे चलेंगे और अपने आप को मानवीय गुणों से भर कर चलेंगे तो ही वाक्य ही ये जीवन जीने के लिए एक असली जीवन, मनुष्य जीवन दैवीय गुणों से भरा हुआ एक मुकम्मल जीवन होगा। और इसी समय फिर ये हकदार भी मृत्यु के बाद भी ये मोक्ष का, मुक्ति का। तो हर किसी ने हर समय पे यही मनुष्य को रास्ता दिया जो आज भी सन दे रहे थे कि जीने को पूरा जीवन जो मिला है उसको कैसे जीना है, एक सिर्फ समय व्यर्थ करके या फिर एक किसी की नकल करते करते जैसा वो कर रहे हैं, जैसा एक रिवाज, एक परंपरा, वैसा ही बिना समझे कारणों के करना है, या अपने जीवन को हर पल जीते जी वो कारण समझना है कि किस तरह जीवन खूबसूरत बनाया जाए, ये धरती खूबसूरत बनाई जाए। जिस समय हम इस धरती पे आए, ये धरती को जब छोड़ के जाएं, तो किस तरह उसको और सुंदर बना के जाना है। एक प्राकृतिक रूप में भी जहाँ एक कर्तव्य है हम सबका, किस तरह ये दूषित हवा को पेड़ उगा के भी स्वच्छ किया जा सकता है और ये कचरा ना फैला के एक उस रूप में अपनी नियमित जगह पे वो कूड़ा इकट्ठा करना, और कैसे वो रिसाइकल की भी बात आती है कि व्यर्थ चीज़ नहीं करके उसका किसी और तरीके से भी इस्तेमाल करना, वही वो बात कि ये फिर प्रदूषण सिर्फ बाहरी संसार का नहीं, ये जीते जी हमें अंतर मन को भी साफ करना है, इस परमात्मा को और बसा के जो कि पहले ही हमारे भीतर भी है, बाहर भी है, कण कण में है, हर जगह है। तो वही उदाहरण जो एक मृग का आता है कि एक खुशबू जो उसके अंदर ही होती है वो मृग समझता नहीं, और जगह जगह एक जंगल में ढूंढते ढूंढते कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, वो खुशबू तक जाने में भटकता है, और असल में तो वो कस्तूरी की खुशबू उसके अंदर ही है, उसकी नाभि से ही आ रही है। और कैसे ये समय फिर व्यर्थ हो जाता है सिर्फ और सिर्फ वो भटकन में। तो ये पहचान परमात्मा की जब हो जाती है तो वो भटकन एक समाप्त हो जाती है आत्मा की। अब उस तरह देखें तो फिर जिस तरह उस ब्रिक को बता दिया जाए कि इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस स्थान पे हो उसी स्थान पर ये खुशबू भी है, तो बात वही, परमात्मा हर जगह है, अंग संग है। जिस समय जैसे अभी भी आवाज़ लगा रहे थे महापुरुष के ये ब्रह्म ज्ञान की दात, आज सत्संग के बाद भी ये प्राप्ति की जा सकती है, तो बात वही कि सिर्फ सत्संग में आने का मतलब सिर्फ वो नहीं कि आए एक क्रिया रूप में बैठ गए, कुछ सुना भी, कुछ अनसुना किया, कुछ अपना ध्यान इधर उधर लगा लिया, भटका लिया, पर मूल को नहीं पकड़ा। मूल तो बस ये परमात्मा ही है। इस परमात्मा को जो पकड़ लेते हैं, मन में बसा लेते हैं, हर समय इसका दीदार करते हैं, एक एहसास में इसी निराकार के रहते हैं, तो वो ही वाक्य ही संत हैं। उनका जीवन हर पल भक्तिमय है, वरना तो भक्तों के ऊपर ऐसे जीवन जीने के लिए उनका तो कारण था ये परमात्मा, पर दुनिया ने सिर्फ एक वो पकड़ लिया कि जिस तरह उन्होंने किया हम भी वही करेंगे, पर मूल नहीं पकड़ा, ये परमात्मा को जानने की जिज्ञासा नहीं अंदर रखी, इस परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, तो फिर सिर्फ एक दिखावा, एक नकल रूप ही करना तो एक जीवन को सफल नहीं बनाया। क्योंकि वो एक उस तरह की बात है कि अगर कोई एक घाव है, चोट है, तो उसको पहले मरहम लगा के वो अपनी त्वचा को, स्किन को नॉर्मल करना है, वरना तो एक छुपाने के तौर पे ऊपर से मेकअप लगा के भी छुपा दिया जाता है। तो बात वही कि ये ऊपर की सुंदरता नहीं, ये अंदर से भी सुंदर होना है। ये हर किसी के अंतर मन की जो भटकन ये आत्मा की, ये सिर्फ और सिर्फ इसका समाधान ये परमात्मा ही है। जैसे ही इस परमात्मा को देख के भक्ति की शुरुआत की जा सकती है, उसी तरह फिर अपने मनों में और गुणों को भी अपनाया उसी पल से जाया जा सकता है, और वो फिर एक ऊपरी मेकअप की तरह अच्छा व्यवहार नहीं, एक अंदर से वो जिस तरह इस नाभि में खुशबू उस मृग के, तो वही अंदर से बाहर की सुंदरता तभी बनती है जब एक एक मानवीय गुण हम पहले खुद बन जाते हैं। सिर्फ प्यार की बात ही नहीं, पहले प्यार बनकर फिर प्यार बांटना, सिर्फ एक विशालता की बात नहीं, इस विशाल निराकार परमात्मा से जुड़ गए, ये इतना विशाल जिसका कोई अंत ही नहीं है, कोई शुरुआत ही नहीं है, जब इसके साथ मन जोड़ लेंगे तो हम भी अपना मन इतना विशाल बना लेंगे कि सबको अपना लेंगे, हर किसी की कमियां हो ना हो उससे फ़र्क नहीं, कि सब प्यारे हैं, सभी इस परमात्मा की संतान हैं, सब में यही एक परमात्मा का निवास, सभी प्यारे, सभी श्रेष्ठ, और कोई भी और फिर हम जो मानवीय गुण सोचें भी वो स्वयं बनना बहुत ही आसान हो जाता है, सिर्फ इस परमात्मा के ऊपर अपने मन को टिका कर वो गुण खुद ब खुद हमारे अंदर आ जाते हैं। तो ऐसा व्यवहार, ऐसा जीवन हर एक के जीवन में आना संभव है, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ये अपने अहंकार का त्याग करना ज़रूरी है। क्योंकि एक अहंकार आते ही जब ये लगता है कि हमको कोई क्या सिखाएगा, हमें तो पहले ही सब कुछ आता है, हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता ही सबसे ठीक है, और किसी के पॉइंट ऑफ व्यू, नज़रिया, रास्ता तो कोई मायने ही नहीं रखता। एक हमसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन होगा, हमसे ज़्यादा शारीरिक बल किसमें होगा, हमसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला अपनी बातों से, एक भारी सुंदरता से कौन होगा, ऐसा करते करते अगर भाव ये अहंकार के ही हो मन में, तो फिर तो कोई क्या ही सीखेगा। जब लगेगा हमको सब कुछ आता है, तो जहाँ इस पूरे संसार से ये कण कण में ही शिक्षा है, वहाँ इस शिक्षा को एक सिर्फ किताबी तौर पे ही नहीं, जब जितना ज़्यादा हम एक एक मनुष्य से, इस प्रकृति से जुड़ेंगे, ये परमात्मा के ऊपर आधारित करेंगे अपना रिश्ता, तो वाकई ही हर तरफ से शिक्षाएं मिलती रहेंगी जो जीवन में लागू करके जीवन को एक सुधारा जा सकता है, जीवन को एक सुंदरता दी जा सकती है। तो कैसे अपने जीवन में हम अगर देखें, तो ये अहंकार ही है जो हमारी दुर्गति कर देता है, और जहाँ अहंकार नहीं, वहाँ एक समर्पण भाव, एक अपनी अस्तित्व की एक उस तरह अहंकारी रूप नहीं, तो वाकई ही ये समर्पित जीवन इस परमात्मा को बहुत ही एक हमारे लिए भी कल्याणकारी बन सकता है। जैसे एक वो उदाहरण सभी ने लोहे की हमेशा से देखी कि लोहा अगर इतना मजबूत है, इतना स्ट्रॉन्ग है, तो सिर्फ और सिर्फ उसके खराब होने का कारण उसकी अपनी जंग है। वो जो जंग लग जाती है, वो अंदर से खोखला करते हुए फिर बाहर की भी मजबूती नहीं रहती। तो उसी तरह ये अहंकार या और जो भी बुरी चीज़ों को हमने मन में अगर रखना है, तो चाहे बाहर से तो पहले हम ठीक ही दिखेंगे, कैसे वो मन खराब होगा, फिर बुद्धि खराब होगी, और फिर वो शरीर भी खराब होगा। तो कैसे ये हमें किस तरफ अपने जीवन को लेके जाना है, वो हमारे मन में क्या है, वो डिसाइड करता है, वो चॉइस है कि या तो इस परमात्मा को बसा लें जो इतना स्थिर है, हर समय के लिए कायम दायम है, तो ऐसे ही हम इस स्थिरता को अपनाएं, सहजता को अपनाएं, या फिर संसारिक चंचलता, जो पल पल बदलने वाला मटीरियलिज्म, इसको अपना के खुद अपना नष्ट कर लें। तो बात वही फिर कि संसार का त्याग करने की यहाँ बात नहीं हो रही, वस्तुओं को, घरों को, एक समाज को त्यागने की बात नहीं हो रही। बात यह है कि समाज में रहते रहते भक्ति करनी है, हर चीज़ का उपयुक्त एक इस्तेमाल भी करना है, पर उससे अपने मन को इतना पकड़ के नहीं रखना कि फिर उस चीज़, उस वस्तु का होना ना होना हमारे मस्तिष्क को इतना ख़राब कर दे कि फिर बुरे ख्यालों से ही, ये नेगेटिविटी से ही मन भरा रहे, सोच भरी रहे। तो ये सुख साधन, ये हार्ड वर्क करके, मेहनत करके, जहाँ अपने सपने होने भी हर एक के मुबारक हैं, उस दिशा में भी जाना मुबारक है, उसको एक सही तरीके से, एक बिना चतुर चालाकियों के कुछ गलत हथकंडे करने से वो उपलब्धियाँ भी प्राप्त करनी मुबारक हैं, पर वो तब तक ही मुबारक हैं जब तक ये याद रहे कि ये देने वाला भी ये परमात्मा ही है, और जब चाहे ये ले भी ले, तो फिर उन वस्तुओं को कैसे हमारे, हमें सिर्फ एक ध्यान रखने के लिए मिला है, एक सिर्फ ये हमारी नहीं है, जब पहले ही ये तन भी हमारा नहीं, मन भी, और ये संसारिक रूप, माया, धन, कुछ भी हमारा नहीं, ये परमात्मा की ही कृपा से है। तो हमें सिर्फ ये चीज़ों का अपना ध्यान रखते हुए इतना लगाव नहीं वस्तुओं से कि उनके ना होने पे फिर एक तड़पता ही रहे, बाकी का जीवन एक बेचैनी में कटे। तो अपने आप को इस मधुरता से भरा जाए, अपने आप को एक बहुत ही संतमति के अनुसार जिया जाए, ताकि ये जीवन वाकई ही एक पूर्ण जीवन हो, ये जीवन एक कंप्लीट लाइफ की तरह जिया जाए, कि इसमें हमारे निजी एक नेचर, एक स्वभाव में जो कुछ कमियां हैं, उसको अपना केंद्रित रूप बनाकर कि हम अपनी कमियों पे गौर करें, उन्हें सुधारें, ना कि दुनिया में हर एक के बारे में टिप्पणी करें, एक उनकी कमियों को उछाल उछाल के हर एक के आगे लाएं, तो अपने ऊपर इस रूप में केंद्रित रहें कि कमियां जहां तक हैं, वरना तो अगर एक महत्वता, एक ईगो, एक उपलब्धियों पे केंद्रित कर लेंगे अगर खुद को, तो फिर वो अहंकार का आना लाजमी हो जाएगा। तो अपनी कमियों को हर कोई सुधारता चला जाए, दूसरों से उनके गुणों को अपना कर उनसे सीख के, ये जो संतों का संग मिला है सत्संग रूप है, तो हर एक ने इस परमात्मा से ही जोड़ने की बात करनी है, इस परमात्मा को अंग संग महसूस करना है हर समय। तो ऐसा जीवन जीना एक बहुत ही सरल भी है और बहुत कठिन भी है। तो ये कठिनाई का भी अगर माना तो वो तब तक ही कठिन है जब तक हम मन में इस परमात्मा को पूरी तरह नहीं बसाएंगे। अहंकार हमारा एक ईगो ही बात करेगा, जिस पल ईगो का त्याग हो गया, अहंकार खत्म, तो फिर ये बहुत ही सरल मार्ग हो जाता है। ये बिल्कुल एक बिना प्रॉब्लम जैसे सांसें हैं, दिल की धड़कन है, पलक झपकना है, कुछ भी काम कर रहे हैं, ये अपना साथ साथ काम कर रहा है, तो भक्ति भी ऐसी हो जाती है। घर, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कामकाज इत्यादि कहीं भी हों, ये भक्ति साथ साथ ही करी जा सकती है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास इस निराकार से कि सेवा सुमिरन सत्संग हर एक के जीवन में आए, ये भक्ति हर किसी की और मजबूत होती चली जाए। सत्संगत जी, धन्य गाजी।